الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ جل شانہ کی عنایت اور مہربانی ہے, اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اور نوازنے کے مختلف طریقے طے فرمائیں. ایک اس میں زمان اور مکان کا بھی, کہ یہ زمانہ مل گیا تو اس میں نیکیاں بڑھ گئیں, یہ جگہ مل گئی اس جگہ پہ چلے جاؤ تو نیکیاں بڑھ گئیں. مثلا خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تو ایک رکعت کا 100,000, ایک ذکر کیا سبحان اللہ تو 100,000 سبحان اللہ, ایک ختم قرآن کیا تو 100,000 ختم قرآن. یہ کیا ہے؟ یہ مکان کی تبدیلی, اس مکان میں اس جگہ میں یہ اجر. آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی میں یہی اعمال کیے جائیں تو 50,000 گنا بڑھ جاتے ہیں. ایک قرآن جیسے ختم کرو گے 50,000 ختم قرآن, ایک ذکر کیا 50,000 ذکر. بیت المقدس قبلہ اول میں اعمال کیے جائیں تو وہ 25,000 گنا بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مکان کی تبدیلی, یہ مکان کی فضیلت. ایک نماز اپنے گھر میں پڑھی, ایک ثواب ملا, ایک گنا. قریب کی مسجد میں پڑھی, چھوٹی مسجد میں 27 گنا. جامع مسجد میں پڑھی, 500 گنا. یہ کیا ہے؟ مکان کی اہمیت, مکان کی قیمت. گھر سے نکل کر کے گئے تو اس پہ یہ اجر اور یہ ثواب, جتنی بڑی مسجد میں گئے جامع مسجد میں اتنا اجر ثواب. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ اعتکاف کا ماشاءاللہ وقت آنے والا ہے, اللہ نصیب فرمائے, تو اعتکاف کرتے ہیں لوگ, جاتے ہیں اچھی اچھی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بھائی علماء کرام ہیں, مشائخ ہیں, ان کی صحبت میں رہ کے بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اپنی قریب کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو پھر وہاں کرنا ضروری ہے, اس کا حق ہے پھر. اور پھر اس کی صورتیں الگ الگ, اس کی بھی صورت ہے کہ کوئی چاہے کہ میں اپنی مرضی سے نکل کے جا کے کہیں بیار سن کے آ جاؤں تو وہ پوچھ لے تفصیل, اس کی بھی تفصیلات ملتی ہیں. تو خیر میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے انداز نرالے. تو یہ تھا مکان کی قیمت, اور ایک ہے زمان کی قیمت. زمانہ قربانی کا کہ 3 دن آ گئے, عید الاضحیٰ کیا ہوا, اب اس میں قربانی واجب ہے. سب سے افضل عمل اللہ کو ان دنوں میں جانور کا خون بہانا ہے, سب سے زیادہ قرب ملتا ہے اور فرائض کے بعد. اسی طریقے سے ماہ مبارک آ گئے, اب اس میں نیکیوں کی قیمت بڑھ گئی. بارہ سنا نا, ایک نفل فرض کے برابر ہو گئی, اس کی قیمت جو ہے فرض کے برابر ہو گئی. और एक फर्ज 70 फर्ज बराबर हो गया। तो इस पर हम अल्लाह जल्ले शानों का शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह ने ये ज़माना हमें अता फरमाया, ये मौका अता फरमाया जिसमें कीमत कहाँ से कहाँ पहुँची भी है इस वक्त। और बार बार यही इसी बात की याद दहानी कराई जाती है, इसी बात का मुजाकरा किया जाता है। कहना क्या है, यही कहना है कि हम इस इन औकात की कदर करें। बस रोज़े की अहमियत माशाल्लाह सभी जानते हैं कि रोज़ा कितना कीमती है। फरमाया कि एक रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का अगर किसी का रह जाए किसी भी वजह से, चाहे उज़ुर से चाहे कोई जानबूझ के छोड़ दे, अब उसकी तलाफी में पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो इस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। सोचिए क्या कीमत है रमज़ान मुबारक के रोज़े की। तो बात यही है कि ये अय्याम जो चल रहे हैं, इन अय्याम की उसूलियाबी की कोशिश हो जाए, ये मजालिस, ये मिलना, ये जुलना, ये बैठक, ये मुज़ाकरा, बस इसी को याद दिलाना है। और यहाँ थोड़ा सा जिन लोगों ने मेहनत की है अल्लाह के रास्ते में, इन अय्याम की कदरदानी की है, इन अय्याम को वसूल किया है, उनकी मिसालें हमारे सामने हैं। सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कैसी मेहनत फरमाई। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शुरू होता था तो कमर कस लेते थे। आपकी तो वैसे ही पूरी ज़िंदगी इबादत से मामूर है, लेकिन रमज़ान में और बतौर ख़ास कमर कस लेते थे। और आखिरी अशरे में तो फिर हद ही हो जाती थी। फरमाया के वक़ू में कि बिस्तर पर तशरीफ़ ही नहीं लाते। या आलम, तो ये क्या था, ये हमारे लिए तालीम थी। ये आप तो बख्शे बख्शाए, वजह तख्लीक़ कायनात, लेकिन इन अय्याम की जो बरकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और 6 महीने पहले से इंतज़ार शुरू फरमा देते थे रमज़ान शरीफ का, और 2 महीने पहले से तो और दुआई शुरू फरमा देते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। रजब व शाबान, रजब के शुरू से ये दुआ शुरू फरमा दी, या अल्लाह हमें रजब व शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा। और फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो तुम दुआ करो कि सारा साल, तमन्ना करो कि सारा साल रमज़ान ही रहा करे। ये है रमज़ान, क्या अल्लाह की रहमत को तवज्जो होती है, अल्लाह ताला देने के लिए बैठे, कौन है जो हमसे लेता है। और लेने का तरीका यही है, रोज़े, तरावी और फ़राइज़ तो सारा साल है, 5 वक्त की नमाज, दीगर चीज़ें, इसमें क्या चीज़ मुमताज़ है, रोज़े, तरावी, रोज़े रखो तरावी पढ़ो, रोज़े रखो तरावी पढ़ो। वादे कहते हैं 20 रकत हमसे नहीं पढ़े जाते, कैसे पढ़े 20 रकत, खा के इतना हो जाते हैं कि पेट टाइट हो गया, इतना खाया। मैं कहता हूँ भाई ये अल्लाह मैंने तुम्हारे जो खाए हुए हैं ना उसको हज़म करने का इंतज़ाम किया, जो रफ्तार खुलता है बस हाथ तो रुकता नहीं। फिर बकौल शेख अली रहमतुल्लाह अलैह के सहरी में हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर खाते हैं कि दिन भर भूख ना लगे इसलिए अच्छे से खा लो भाई, और अफ्तार में तलाफी माफात के तौर पर खाते हैं कि पूरा दिन भूखे रहे हैं उसकी कसर निकालो। तो अब जो वो कसर निकाली और पेट को इतना भर लिया, अब वो कैसे हजम हो, तो अल्लाह मैंने तरावी दे दी, पढ़ो 20 रकत, बल्कि और ऐशा की सारी फ़राइज़ और दीगर चीज़ें मिला ली जाएँ तो 17 रकात वो कितनी हो गई, 37। अब 37 रकात जब पढ़ेगा तो वो सारा खाया पे हजम। खैर ये तो वैसे एक लतीफे की बात कर रहा हूँ, ये तालीम नहीं है कि इतना खाया जाए, लेकिन हमारी फितरत से तो अल्लाह में आ गया है ना। अकाबिर ने तो बस क्या अर्ज किया जाए, किस तरह रोज़े गुजारे हैं, किस तरह खाया है, किस तरह पिया है। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद साहब दिल्ली के पीर मशहूर थे उस ज़माने में, जो दिल्ली थी ये निज़ामुद्दीन बस्ती निज़ामुद्दीन, ये मज़ाफ़ाती इलाका था दिल्ली का, शहर से बाहर। वहाँ ये हुमायूं का मकबरा और ये जो है सारे कब्रिस्तान था, तो वहीं पे इनका पड़ाव रहता था। वहाँ एक मस्जिद बनाई हुई थी और उसमें उनके इंतकाल के बाद मेवात का कस्बा करीब था, तो उन्होंने मुतालबा किया भाई यहाँ पे कोई आप अपना नुमाइंदा रखें। तो वो कहना चाहिए कि कुरा जो है मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह के नाम निकला है, तो आपने यहाँ जाकर पड़ाव डाल दिया, वहीं ठिया बना लिया अपना। कभी कभी वहाँ से अपने घर आ जाते थे कांदला, ये तो वहीं रहते थे, वही खानकाह थी हजरत की, वही मस्जिद। तो उनके एक चचाजाद या कोई इस तरह के भाई थे, मामूजाद शायद मुजफ्फर नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भाई तो दिल्ली के पीर हैं, बड़े माल उड़ाते होंगे, चलो कुछ दो चार रोज़े उनके पास भी गुजारते हैं, यहाँ तो सूखी सूखी चल रही है अपने गाँव में। रमज़ान के दिनों में वो पहुँच गए वहाँ, वो अफ्तार का जब आया तो दस्तखान लगाया, बैठे कुछ भी नहीं। हजरत ने फरमाया अरे भाई वो मेरे जो बदने में गुलर हैं वो ले आओ, लाकर गुलर इतने सारे डाल दिए गए। रमज़ान हो गई, गुलर खाए, पानी पिया, चलो नमाज की तैयारी। उसके बाद सोचा कि कोई खाना वाना आएगा, इंतजार में बैठे हुए कुछ भी नहीं। शहर हो गए, अब शहर में खाना खाएंगे ना, कुछ शहर में दस्तखान लगा, कुछ नहीं आ रहा। दस्तखान, अरे भाई देखो वो गुलर होंगे ना, ले आओ। फिर वही गुलर, गुलर खाए, पानी पिया, दुआ पड़ी। अब जो सुबह हो तो उन्होंने कहा, भाई से कहा, भाईजान अच्छा मुझे इजाज़त दी। अरे अभी कहाँ, अभी सब तुम आए हो, एक ही दिन हुए हैं, अभी थोड़ी जाने देंगे तुम्हें। उन्होंने कहा यार मैं तो कहाँ फंस गया, मैं तो सोच के आया था यहाँ दिल्ली की बिरयानियाँ चल रही होंगी, दिल्ली के चटखारे चल रहे होंगे, अब भाई की इजाज़त नहीं मिली तो अब जाहिर जा ही नहीं सकते। खैर जैसे तैसे करके रोज़ा पूरा किया, शाम अफ्तारी में बैठे, फिर वही गुलर, फिर गुलर अफ्तार में। अब तो इनके जब्त की इम्तिहान आ गई, अब तो कह भाई आप मुझे इजाज़त दें, क्या नहीं इजाज़त नहीं। थोड़ी देर गुजरी थी कि रेड़े पे एक देख चली आ रही है, हजरत ने देखा करीब आ गया, अरे आओ मुजफ्फर आओ, तो आ जाओ तुम्हारी मुराद भर आई, आ जाओ तुम्हारी मुराद भर आई, तुम्हारे लिए आई है ये बिरयानी की देख थी। दरिद्र दूर हो गए। तो देखो इस तरह से रोजे रखे हैं हमारे बुजुर्गों ने, काबिर ने इस तरह का वक्त गुजारा है, अल्लाह मैंने भेज दिया, खा लिया, नहीं भेजा चलो भाई पानी पी लिया, रो कर लिया। आज हम अपने दस्तखान पर नजर डालें, सहूर व अफ्तार पर नजर डालें, तो आज तो एक अजीब फिजा बन गई है। अफ्तार की ये तो एक ऐसी इतना अहतमाम और इतनी जो है पूरी, जैसे कहते हैं पूरी कौम जो है लगी हुई है, ये डिश बनेगी और ऐसे बनती है, ये वो सिखाया जा रहा है, मुख्तलिफ इदारे सिखा रहे हैं डिशें बनाने के लिए कि ये डिश ऐसे बनती है और ये ऐसे बनती है, और घर घर उसको सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके लवाजमात खरीदे जा रहे हैं, और वो यानी ऐसा महसूस होता है कि रोज़ा जो है वो इसी इसी अफ्तारी के लिए रखना है, ऐसी अफ्तारी करने के लिए रोज़ा रखना है। अब जब ऐसी तैयारियां अफ्तारियों के लिए होंगी तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि फिर दीगर जो मकसूद आमाल हैं उसमें उसके लिए वक्त कहाँ बचा। बस इसी में लग गया कि जिस आज शहर में ये होगा, ये आइटम होंगे आज शहर में, और आज अफ्तार में ये आइटम होंगे, तो फिर कहाँ बचेगा वक्त इबादात के लिए, ताआत के लिए, जिक्र अज़कार के लिए। तो हज़रत शेख ने फरमाया कसर नफसी से काम लेते हुए कि अपनी नाकारगी से तो ये नाकारा कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अपने घर की ख्वातीन को देखकर खुश होता हूँ कि जो खानगी काम के साथ साथ 15-20 सिपारे योमिया पढ़ लेती। हालांकि खुद अपना ये आलम था कि एक ख़त्म कुरान मजीद दिन में और एक ख़त्म कुरान मजीद रात में करते थे। बाज़े रमज़ान हजरत कैसे गुजरे, और एक एक ख़त्म पूरे यानी 24 घंटों में तो वो तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये आलम था अपना, और घर की एक ख्वातीन का ये आलम था कि 15-20 सिपारे काम के साथ साथ, तो क्या चीज़ थी वो? ये चीज़ थोड़ी थी जो आज हम करते हैं, इतने आइटम बनेंगे और इतनी लवाजमात होंगे और ये होगा और वो होगा, वो यही था। अभी सादा सुधा खा लो, ये दिन जो मिले हैं ये तो कमाने के लिए मिले हैं। खाना तो सारा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, सादा सुधी खा लो, जो मैं अल्लाह में आसानी से खिला दें खा लो, ज़्यादा उसकी फिक्र में। तो ये वो लोग थे, तो उनके लिए वक्त था उनके पास, है ना, और उस वक्त ताआत में, इबादत में, जिक्र में, इसमें गुजारा करते थे। आज तो अल्लाह ताला हमारी हालतों पर रहम फरमाए, ज़ौक ख़त्म होता जा रहा है, ज़ौक ख़त्म होता जा रहा। हालांकि इतनी तालीमात, इतनी जो है लिटरेचर और इतने इस्लामी और दीनी तालीमात जो है सामने आती रहती हैं, लेकिन अमल जो है उसमें बड़ी बड़ी कमी होती जा रही है। यार दोस्तों ने रातें गुजारने के लिए क्रिकेट मैचों का इंतजाम किया हुआ है, महल्ले महल्ले ये लाइटें जल रही हैं, बल्ब रोशन है, और पूरा पूरी रात क्या जी मैच खेल रहे, और पूरी पूरी रात कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है किसी प्रोग्राम की, किसी की कि स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की छुट्टियों का ये है फ़ायदा। अरे भाई ये सहूलत मिली है आपको, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए और दीगर अदारे बंद हो गए, अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि रातें काली करो, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, रात को बस हम जाग लेते हैं, दिन में सो जाते हैं, रोज़ा गुजर जाता है। ये वक्त इसलिए मिला है, अकाबिर ने तो इन रातों को जाग कर इबादत में, ताअत में, कुरान शरीफ की तिलावत में गुजारा। पढ़िए देखिए कैसे कैसे वाकात हैं। शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह माजरे मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबिर हैं, इनके वाकात पढ़िए। हाजी साहब फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैं जवानी के दिनों में रमज़ान की रातों में सोया हूँ। दो तीन हाफिज़ बच्चे, एक एक हाफिज़ अमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे थे हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ, वो हज़रत के बहुत चहेते लाडले थे, उनके पीर भाई थे हाफिज़ अमीन साहब, शहीद हो गए थे तो इसलिए भी मोहब्बत बहुत थी, वो हज़रत के साथ होते थे, कभी वो सुना रहे हैं, कभी कोई और थे, दो एक दो बच्चे और थे ऐसे ही छोटी उम्र के, पूरी रात इसी में चुगल रहता था सुनाने में। कुरान जी कहते हैं मुझे जवानी में याद नहीं कि मैं सोया हूँ, है ना। तो ये ज़ौक था हमारे अकाबिर का रमज़ान शरीफ का आने पर, घर घर तिलावत, घर घर जो है जिक्र, घर घर जो है नवाफिल, इतने सिपारे सुनाएंगे, इतने सिपारे सुनाएंगे, इतने सिपारे सुनाएंगे। रमज़ान की आमद इसलिए हुआ करती थी, रमज़ान के आने से यही खुशी इसलिए होती थी कि अब इबादत का एक محلے محلے، یہ ضوابط. آج کیا ہے کہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لٹریچر تو بہت پھیل رہا ہے، لیکن روح نکلتی جا رہی ہے. میرے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مولوی سفیان بھی جب فلاح مسجد میں بلاک نمبر 14 نصیر آباد تشریف لائے سن 80 کے آس پاس، اس وقت محلے کے چند بزرگ ہوتے تھے اعتکاف میں. اس زمانے میں اعتکاف کا اتنا رواج نہیں تھا، بعد میں بہت ماشاءاللہ بڑھ گیا. تو چند بزرگ ہوا کرتے تھے، حضرت کا معمول تھا اعتکاف کا، حضرت ہوتے تھے. تو حضرت نے سنایا کہ چند بزرگ اعتکاف کرتے تھے اور وصول کرتے تھے اوقات کو. ان میں ایک بزرگ تھے جو 15 سپارہ یومیہ پڑھتے تھے، اور کبھی میں نے انہیں اثر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. یعنی اثر تک 15 سپارے پورے کر چکے ہوتے تھے اور اس کے بعد تسبیح مشغول رہتے تھے، اور رات کو بوقت تہجد رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. کوئی یہاں نماز پڑھ کے رو رہا ہے، یہاں گریہداری کر رہا ہے، کوئی اس طرف کر رہا ہے، کوئی اس طرف کر رہا ہے. یہ حضرت اس وقت سنایا کرتے تھے جب ماشاءاللہ اس مسجد میں ایک تعداد اعتکاف کرنے لگی اور تینوں وقت کے کھانے کا انتظام حضرت کی طرف سے ہونے لگا، افطار بھی، کھانا بھی، سحر بھی. خوب بریانی کی دیگیں کھڑکنے لگیں، خوب افطاریاں، اور مجمع جو ہے تقریباً 500 اس مادی نعمت سے ہم بھی سرفراز ہوئے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ. تو حضرت اسی پرانے وقت کو یاد کر کر کے افسوس کیا کرتے تھے کہ آج اتنی بڑی تعداد ہے لیکن رونے والے نہیں. مجمع تو جمع ہو گیا ہے لیکن وہ روحانیت نظر نہیں آ رہی، اوقات کو وصول نہیں کرتے، باتوں میں اس میں اس میں وقت کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بھائی، اعتکاف کا مقصد تو یکسوئی تھا. پہلے جو لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے تو وہ تو باقاعدہ اپنے حجرے سے جب نکلتے تھے تو ایک کپڑا ایسے ڈال لیتے تھے اوپر کہ کسی کو دیکھے بھی نہیں، کسی پہ نظر بھی نہ پڑے. باتھ روم جا رہے ہیں، وضو کے لیے جا رہے ہیں، ایسے کپڑا ڈال لیا اوپر اور اپنا گئے، جلدی سے فارغ ہوئے، پھر آ کے اپنے حجرے میں بیٹھ گئے. حجرے سے نہیں نکلتے تھے، بس جماعت کے وقت میں شامل ہو گئے، پھر حجرے میں گھسے. یہ تھا اعتکاف، کہاں کسی سے ملنا، کسی سے بیٹھنا، بیٹھک کرنا اور باتیں چیتیں کرنا. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے یہاں ماشاء اللہ 1500 2000 لوگ اعتکاف کیے، انہوں نے بھی یہی اصول دیا تھا. بھائی دیکھو، کھاؤ پورا، سو پورا، نہ کھانے پہ کوئی اعتراض ہے مجھے، نہ سونے پر. بس ایک کام کرو، باتیں نہ کرو. اور ہدایت تھی کہ دیکھتے رہو اپنے خاص خدام کو، حضرت کو جو گفتگو کرتا ہوا نظر آئے اس کو تنبیہ کرو. بار بار حضرت یہ فرماتے ہیں، بھائی دیکھو، میں نہ سونے پہ آپ کو منع کرتا ہوں اور نہ کھانے پہ منع کرتا ہوں. بغور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں 2 مجاہدے ختم ہو گئے، پہلے زمانے میں 4 مجاہدے تھے. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا. فرمایا اس زمانے میں 2 مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے انسان ویسے ہی کمزور ہو گیا ہے مصنوعی چیزیں کھا کھا کر کے. اس لیے کھاؤ بھی پورا اور سو بھی پورا، صحت متاثر نہ ہو، دماغ میں خلل نہ آ جائے. تو وہی اصول حضرت کا، حضرت شیخ کا. وہ کہتے ہیں بھائی کھاؤ بھی پورا، سو بھی پورا، سو کے گزار دو، لیکن بس بات نہ کرو. مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اس طرح سے تمہیں وہ روحانیت مل جائے گی اور بات کرنے سے وہ روحانیت ضائع ہو جائے گی. جیسے بزرگوں نے کہا کہ تو یہ راستے بند کر. کون سے؟ آنکھ بند کر, گوش بند کر, کان, زبان بند کر, یہ راستے بند کر. کس سے بند کر؟ غلط بولنے سے, غلط دیکھنے سے, غلط سننے سے. کیا ہوگا؟ چوتھا راستہ کھلے گا. کون سا راستہ؟ یہ قلب. پھر یہ قلب کھلے گا. تو یہ تین بند تو کر. جب تک یہ تین بند نہیں کرے گا یہ چوتھا نہیں کھلے گا. یہ علم لدنی جو ملتا ہے, جو کہنا چاہیے کہ جہاں سوتے پھوٹتے ہیں, شفاف پانی کے سوتے, وہاں سے جا کے کنیکشن جو ملتا ہے روحانیت کا, وہ یہ تین راستے بند کرنے سے ملتا ہے. جو کمایا اس کو بچایا, تلاوت کی, ذکر کیا, اچھی بات کی, دین کی بات کی, دین کی بات کر لے وقت حسب ضرورت. اب اس کی روحانیت آئی, وہ بچے گی کیسے؟ فالتو نہ بولے, فالتو بیٹھک نہ کرے. ویسے تو یہ اصول سال کے 24 گھنٹے ہے, لیکن اس رمضان شریف میں اور اس دوران اعتکاف میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور اسی لیے یہ تھوڑا سا مجاہدہ بھی ہو جاتا ہے. تو خیر میں اس پہ عرض کر رہا ہوں, آپ کہیں گے تو رمضان کے اعتکاف کی ہدایت شروع ہو گئی ہے, تو مجموعی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کر دیا ہے, ماشاءاللہ, دیکھو دیکھتے ہیں آج کتنے ہوں گے بھائی, کون سا روز ہے؟ 15واں روز ہو گیا, آدھا رمضان گزر گیا. ایام و معدودات, یہ تھوڑے دن ہیں, تھوڑے دن ہیں. لوگ ڈرتے ہیں, ارے روزے آ رہے ہیں, روزے آ رہے ہیں, کیسے ہوگا, اتنے سخت روزے, اتنی گرمی, اتنا یہ, اتنا وہ, اور ایسے نکلتے ہیں, شروع ہوا اور ختم, پتہ نہیں چلتا. ایک تو ویسے ہی اس زمانے میں اوقات میں برکت نہیں رہی. دیکھیں آپ کیسے دن جا رہے ہیں, کیسے ہفتے جاتے ہیں, کیسے مہینے جاتے ہیں, کیسے سال جاتے ہیں. ابھی جمعہ گیا نہیں, ابھی جمعہ گیا, ابھی مہینہ گیا نہیں, دوسرا مہینہ گیا, اور سال ایسے جا رہے ہیں. 2017 آ گئی, ارے ابھی تو 15 تھی 16 تھی 13 تھی 14 تھی, ایسے. لیکن ان دنوں کے لیے تو اللہ میاں خود فرما رہے ہیں, یہ ایام معدودات ہیں. اللہ ان دنوں کو جلدی گزروا دیتے ہیں اپنے بندوں کی آسانی کے لیے, کہ میرے بندوں کو محسوس نہ ہو کیا لطف کرم ہے اللہ تعالیٰ کی, کیا شان ہے, مہربانی اور عنایت ہے. دیتے بھی ہیں, لو یہ انعامات, لو یہ, لو اس پہ یہ فضیلت ہے, اس پہ یہ فضیلت ہے. اسوم ولی انا اجزا بھی, کیا انعام دے رہے ہیں. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں. سوچے بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, پریشان حال پھر رہے ہوں گے, سورج سوا نیزے پر ہے, زمین تانبے کی ہے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو کچھ لوگ دسخان پر کھانے کھا رہے ہوں گے, ان اس خوف زدہ ماحول سے ہٹ کر. تو وہ لوگ جو اس ماحول میں ہوں گے ان کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, ہم اس پریشانی میں اور یہ اس طرح. انہیں جواب دیا جائے گا, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रोजे रखे थे, तुमने नहीं रखे। तो इससे भाई ये भी चीज सामने आती है कि रमजान मुबारक के रोजे के अलावा भी रोजे रखने चाहिए है? ताकि ये फजीलत भी बढ़ चढ़ कर मिले ना? सारा साल कुछ ना कुछ रोजे रखते रहने चाहिए। हम तो बस वो जो 29वीं का चांद देख करके इफ्तार करते हैं तो फिर वही पहली के चांद पे ही रोजा रखते हैं। अल्लाह रहम फरमाए हमारी हालतों पर। और सुन्नत देखो ना, अय्याम 20 के रोजे मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 महीने के, ये आप सबका मामूल था। नीज पीर जुमेरात का रोजा, ये मसनून है। अल्लाह जजाय खैर अता फरमाए है सऊदी लोगों को। अभी भी आप अल्लाह हम सबको ले जाए हरम शरीफ तो वहां पीर और जुमेरात को दस्तखान लगता है मगरिब में। जब मैं पहली दफा गया तो मैं बड़ा हैरान हो गया, ये क्या भाई दस्तखान लग रहा है, खैरियत रमजान तो नहीं है वो, कोई है। ऐसे ही दिन था, पीर जुमेरात थी, बाकायदा उन्होंने अफ्तार लगाई, कहवा खजूरें फला फला सब चीज़ें, सब बैठ गए, हम भी बैठ गए। मैंने कहा यहाँ का माल क्यों छोड़े, तो बाद में पता चला कि अच्छा यहाँ पीर और जुमेरात को लाजमन दस्तखान लगाते हैं क्योंकि यहाँ मामूल है रोज़ा रखने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामा हुआ इन्होंने। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज कितने लोग हैं जो कितनी अल्फाज ऐसे वैसे निकालते हैं उन हजरात के लिए है? लेकिन जब उन्होंने जिन चीज़ों को थामा हुआ है उनकी इनको हवा भी नहीं लगी। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह कैसी प्यारी बात फरमाते थे सोचो। वैसे एक बात फरमाते थे कि देखो इनको बुरा नहीं कहो, अगर इनसे कोई कोताही भी कहीं पर नजर आए तो बुरा नहीं कहो। अरे खाना कावा तो इनके घर में है, ये तो जाएंगे और ऐसे गिलाफ पकड़ेंगे और माफी ले लेंगे। तुम तो अमेरिका से और हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से सोचते रहोगे कि वीजा लूं और पैसे खर्च करूं और जाऊं कैसे जाऊं कि छुट्टी लूं फला करूं धमाका करूं, तुम तो सोचते रहोगे प्लानिंग ही करते रहोगे। इनका क्या है, ये तो इधर से निकले घर से और खाना कावा, इनसे पंगा लेते हो, इनसे पंगा ना लो, इनको इनकी बुराइयां ना करो, इन्हें अल्लाह ने बहुत दिया है। हाँ इधर रोजा रसूल बगल में 5 घंटे में रोजा रसूल पहुंच जाते हैं, वहां जाके सलाम सलाम पेश कर देते हैं, आप सत्संग की इजारत कर लेते हैं, आपकी जालियों की दीदार कर लेते हैं, चलो मजे लूटो मजे। इनका मुकाबला करते हो होता हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि उस जमाने में जिस जमाने में वो थे बड़ी गुर्बत थी वहाँ, तो एक बच्चा वो कूड़े पर से कुछ छिलके थे फल के वो खा रहा था। हज़रत को बड़ा तरस आया देख करके, हज़रत ने पूछा बेटा क्या तुम्हारे गुर्बत है पैसे नहीं खाना नहीं कहा जी। उन्होंने कहा जब तुम मेरे साथ चलोगे मेरे मैं जहाँ रहता हूँ हिंदुस्तान, वहाँ मैं तुम्हें खाना भी दूंगा अच्छा, कपड़े भी दूंगा, मकान भी दूंगा, तुम चलो मेरे साथ वहाँ तुमको मैं पढ़ाऊँगा ये। और खुश हो गया राजी हो गया, यहाँ ठीक है कब चलना है बता दिए भाई फला दिन चलना है। इस तरह जाने लगा कि ठीक है मैं घर में बता दूँ अपने अपने, फिर जो है अचानक मुड़ा और कहने लगा कि ये आज के रोजे की तरफ इशारा करके कि ये भी है वहां पर, ये भी है वहां पर। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं ये नहीं है वहां पर, वहां पर ये कहां से है। तो क्या कहता है फिर मैं नहीं जाने का, फिर मैं नहीं जाने का। और भाग गया कहीं, सोचिए यहाँ फाके हो रहे हैं कूड़े के ढेर पर से छिलके उठा के खा रहा है और उसको सब बताया गया, तुम्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, मकान मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, लेकिन रोज़े रसूल को ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत, ऐसी अजमत दिल में भरी हुई, बच्चा है, ये नहीं होगा, कफे में नहीं जाने। क्या शान है उनकी, क्या अल्लाह की अता है उनके, उन्हें अल्लाह ताला समझ दे हमें, शऊर दे हमें, है ना। तो भाई देखो, जिन्हें अल्लाह मियाँ रमजान में हाजिरी दे दे, तो इसको भी हिसाब लगा लो जरा। एक तो वहां का एक एक लाख, और फिर रमजान का जो गुना है, गुना इसको उससे मिलाया जाए तो हिसाब बनेगा कुछ? हम तो नहीं कर सकते हिसाब। कितना मल्टीप्लाई करो इतने गुने को फिर इतने गुने से, तो ये सादत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए माह मुबारक में। इसीलिए फरमाया कि माह मुबारक में उमरा करना हज के बराबर है। तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और लूट रहे हैं वहाँ की, एक तो एक लाख वैसे ही, और फिर रमज़ान की वैसे ही, और फिर जो तजल्लियात अनवारात मरकज़े रुश्दो हिदायत मरकज़े तजल्लियात है वो, खैर मांगना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। और जब तक आदमी नहीं जा पा रहा तो भाई अपने मुकाम पे ही तो कम से कम कदर कर लेना। लूटने वाले तो कहाँ कहाँ लूट रहे हैं, तो अब वो खैर अख्तियारी चीज़, बहरहाल हसरत तो होनी चाहिए लेकिन अख्तियारी नहीं है, गैर अख्तियारी है। तो अल्लाह हमें इन औकात की कदर आई नसीब फरमा जो हमें अल्लाह ने दिए हैं, ये भी गनीमत है, ये भी कम नहीं है। अल्लाह का ताल्लुक अगर नसीब हो तो हर जगह रूहानियत ही रूहानियत, असल है अल्लाह, अल्लाह ताला का ताल्लुक नसीब होना, फिर वो इंशाअल्लाह ताला नफे नफे में अपने उस दर्द दिल की निस्बत से, अल्लाह ताला के ताल्लुक की निस्बत से वो मरातिब और दर्जात ले जाता है। जैसा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुझसे करीब उसको मत समझो कि जो बज़ाहिर मेरे करीब है ना, मकान के एतबार से करीब है, मुझसे करीब वो है जो मेरी सुन्नतों का पाबंद है। तो ये तो खूबी की बात है कि एक आदमी मकानन भी करीब हो और अमलन भी सुन्नत पर हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर किसी को मकानन कुर्बत हासिल नहीं है और वो सुन्नत का पाबंद है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी करीब है। तो मेहनत इस बात पे होनी चाहिए कि उन आमाल को, उन आदात को इख्तियार किया जाए जो नबी अलैहिस्सलाम दे कर गए और जिस पर उनका अमल था। तो रोज़ों की जो सुन्नतें हैं उसको, उनको इख्तियार करना है भाई। दुआ का मामूल है, दुआ किए जाए, अफ्तार शहर में दुआ का मामूल बनाया जाए, अफ्तार में दुआ का मामूल बनाया जाए। मेरे वालिद साहब अल्लाह की रहमत फरमाया करते थे, देखो भाई रोज़े में तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान होता है, शहर के लिए उठते ही, शहर के लिए उठे कुछ 5-10 मिनट पहले उठ जाओ, चलो ज़्यादा नहीं तो वजू कर लो, मुँह तो धोगे ना खाने से पहले, मुँह ब्रश तो करोगे, कुल्ली करोगे, मुँह धोगे, उसी में वजू कर लो, वजू करके 2 रकत 4 रकत पढ़ ली, तजुद हो गई, अब शहरी खा ली, तजुद हो गई ना भाई। तो इसमें तो तहजीद पढ़ना आसान है, और जो अमल रमजान शरीफ में जिस पर मदावत कर ली जाए तो फरमाया कि पूरा साल उसको करना आसान हो जाता है, पूरा साल उसको करने की तौफीक मिल जाती है। ऐसे ही अफ्तार के वक्त में दुआ का मामूल रखा जाए, कोशिश की जाए कि सारे घर वाले एक दस्तखान बिछाए वहां इफ्तार करें। आज हमारा मामूल हो गया, और बाद घरों में प्लेट बनाते हैं, वो उसको नहीं बैठ गया, उसको नहीं बैठ गया, उसको नहीं बैठ गया, वो माहौल नहीं बन पाता। एक दस्तखान बिछाए वहां बैठे, अब दुआ 10 मिनट 15 मिनट पहले बैठ जाएं और अल्लाह से मांगे। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त फरिश्तों को हुक्म है कि सारे काम छोड़ दो और रोजेदारों की दुआ पर आमीन कहो। वो आगे आमीन कह रहे होते हैं हमारी दुआओं पर। ये नूरानी मखलूक, तो दुआ का मामूल बनाया जाए। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, अल्लाह की अता का वक्त है। इस वक्त अल्लाह को प्यार आ रहा होता है अपने बंदों पर, ये मेरे खातिर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अस्सौमोली अना उजजा भी। ये इनकी मजदूरी का वक्त है, इन्होंने दिन भर मेहनत की है, इनको मजदूरी दो। क्या दो? जो मांग रहे हैं दो है? एक तो ये वक्त है और एक ईद की नमाज के वक्त मिलता है ना, वो पूरा लैलतुल जायजा वो रात है, अता की रात, और एक नमाज के वक्त, ईद की नमाज के वक्त ऐलान हो जाता है। वो तो उस वक्त मिलेगा और एक ही रोज मिल रहा है। हर रोज 10 लाख जहन्नमियों को निजात मिल रही है, इफ्तार के वक्त में बख्शिश के फैसले हो रहे हैं 10 लाख। और आखिरी दिन, आखिरी जो रोजा आएगा, उस दिन पूरे माह के मजमुई तादाद के बकदर की निजात होती है। अशराए रहमत, अशराए मगफिरत और जहन्नम से खलासी। 10 रोज अशराए रहमत थी, 10 रोज अशराए मगफिरत चल रहा है, और उसके बाद आगे जो 10 रोज मिलेंगे वो जहन्नम से नजात की के काशरा खिलाता है। इसमें भी लोगों के मरातब के हिसाब से हैं। बाज़े लोग हैं जो पहले से नेकुकार हैं, पहले से सवाले हैं, पहले से अल्लाह वाले हैं, उनके लिए तो पहले दिन से ही रहमत ही रहमत शुरू हो गई, रहमत ही मिल उनके लिए रहमत। बाजे हैं उनमें कुछ कमी है, कुछ कोताही है, कुछ वो 10 दिन मेहनत की उन्होंने, 10 दिन के बाद से उनके लिए शुरू हो गया इनायात और लुत्फ बख्शिश। और कुछ हैं शकील, 20 दिन मेहनत की, तीसरे अशरे में पहुंचे, वहां उनके लिए फैसले हो गए। तो लोगों के हिसाब से, तो दुआ का एहतमाम खासतौर पर इन दोनों उसमें। और एक तो है किताब से दुआ करना, उसका भी मामूल रखे हम। बेहतरीन किताब है मुनाजात है मकबूल दुआ की, हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अल्लाह ताला करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ऐसी मेहनत कर गए उन हजरात ने, तो पूरे कुरान और हदीस से कितनी मेहनत की होगी इन दुआओं को जमा करने में। कुरान मजीद की सारी निकाली, अहदीस की सारी, कुरान और हदीस की दुआओं का मजमुआ है, बेहतरीन मजमुआ। आज हमें पढ़ने का वक्त नहीं, उसका मामूल बना लिया जाए। और एक वैसे अपनी दुआ मांगनी, अपनी जात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुतालिकीन मोहसिनीन के लिए, हम जिस इदारे में काम करते हैं वहां के लोगों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए, और भी पूरी उम्मत के लिए। आज लोग हम क्या मांगे, बहुत से हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, भाई औरों के लिए मांगू? मांगना है। इन दुआ मखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। اور اللہ کو مانگنا پسند ہے. اللہم انک عفون کریم تحب العفو فاعف عنا. یہی دعا سکھلائی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شب قدر مل جائے تو کیا مانگوں؟ یہ دعا سکھلائی. یا اللہ آپ معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں بس ہمیں معاف کر دیجیے, بس ہمیں معاف کر دیجیے. مانگنا سکھایا, مانگو بس اللہ سے معافی مانگو. معافی ہماری ضرورت ہے, نجات ہماری ضرورت ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاقیاء من الاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. تو بہرحال دن بھر کے مصنون اعمال پہ نظر ہو, اس ماہ میں اس کی بھی تھوڑی پریکٹس ہو جائے, دعاؤں کی پریکٹس ہو جائے, دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکال لے آدمی. اوقات کار میں کمی کر دی جاتی ہے, دفاتر والوں کو وہاں تھوڑی سہولت مل جاتی ہے, کارخانے والوں کو سہولت مل جاتی ہے, بازار والوں کو سہولت مل جاتی ہے, تو ان اوقات کو سیکھنے سکھانے میں لگا لے آدمی. کچھ دعائیں یاد کر لے, چند دعائیں یاد کر لی مہینے میں پورا سال کام دیں گی. ایک کتاب لے لیں پتلی سی, یاد کرنا شروع کر. مقصد ہے کہ اپنے اوقات کو آدمی کچھ نہ کچھ استعمال میں لیتا رہے, قیمتی بناتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو ملتا ہے قبول فرمائے, اس کہنے سننے کو قبول فرما لے. ایک چیز جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام ہے. عموماً اسی ماہ میں جو ہے زکوٰۃ لوگ نکالا کرتے ہیں, اس وجہ سے بھی وہی ثواب کی زیادتی کے خاطر. تو اس کا معمول, اس کی اہمیت سامنے ہونی چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری. خواتین اپنا جو بھی کچھ ہے ان کے پاس زیورات ہیں, پیسے ہیں, اس کو اہتمام سے ادا کریں. مردوں کے ذمے نہ لگاتے, بس یہ نہ سوچ لیں کہ بھائی وہ ہمارے مرد دیں گے, وہ دے دیا, نہیں دیا. یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ مردوں ہی کے ذمے. آپ کی زکوٰۃ آپ کے ذمے, خواتین کی. ہاں آپ کا شوہر دے دے وہ اچھی بات ہے, آپ کماتی نہیں ہیں, ظاہر آپ کمائیں گی نہیں تو وہی دے گا. لیکن اگر بالفرض کوئی شوہر زکوٰۃ نہیں دے اپنی بیوی کے زیورات کی یا اس کی, تو اسے اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ دینا چاہیے. یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی ہم تو کماتے نہیں تھے, ہم کہاں سے دیں گے. بیچ کے دینا ضروری, اس کا نصاب صحیح پوچھ لے آدمی. پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہیں اس کا حساب لگا لے, علماء کرام سے مشورہ کر لے, پوچھ لے صاحب میری اس طرح سے تھی کس طرح سے ہوگی, وہ حل نکال دیتے ہیں, حل نکال دیتے ہیں, ہر چیز کا حل موجود ہے. اور اس کو جیسا وہ بتائیں اس طرح سے شروع کر دیں, کم و بیش جس طرح سے بھی. تو اس کا حساب پورا رکھا جائے. اور یہ بھی ذہن میں چاہیے کہ انگریزی تاریخ سے حساب نہ رکھا جائے زکوٰۃ, کیونکہ ہر سال 10 روز کا فرق آ جاتا ہے نا. تو کم و بیش 36 سال میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 70 سال کا ہے کوئی انگریزی تاریخ کے حساب سے, تو اسلامی تاریخ کے حساب سے 72 سال کا. تو اگر وہ انگریزی کے حساب سے چلتا رہا تو 2 سال کا اس پہ وہ ہو جائے گا, لاگو ہوئے اس کے اوپر, جس کو آج کہتے ہیں ڈیو ہے 2 سال کی. تو اسلامی تاریخ کا حساب رکھا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں, ان چیزوں میں. تو اس کا اہتمام ادا سے ادا کریں, اور کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے. تھوڑا سا پیسہ چلا جاتا ہے لیکن فضیلت کتنی بڑی ملتی ہے, اجر کتنا ہے, ثواب کتنا ہے. اور وہ پیسہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے, कल ही हमारे यहाँ तलाक कसर काजमी साहब अमर का तुम बयान फरमा रहे थे जुमे में परसों, तो उन्होंने फरमाया कि माल जो ज़ाया होता है वो दो वजह से होता है। उन्होंने कहा हमने यहाँ कई लोगों को देखा, अच्छे बड़े बड़े खाते पीते कारोबारी, और बिल्कुल साफ हो गया उनका, बिल्कुल नीचे आ गए। तो फरमाया कि हमें लोगों ने बतलाया, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि दो वजूहत से आदमी का माल छिनता है, एक ज़कात अदा ना करने से, दूसरे सूदी लेन देन करने से। ऐसी कितनी मिसालें हैं कि अच्छा खासा काम था, सूदी लेन देन शुरू कर दिया, सब चला गया, सब, और दूसरे ज़कात अदा नहीं करते थे, सब ज़ाया। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक दें। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम अलैकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या हय्यु या क़य्यूम बि रहमतिका अस्तगीस। या रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के आने को तकबूल फरमा लीजिए, जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम बड़े ही कमज़ोर हैं अल्लाह, बड़े ही ज़यीफ़ हैं अल्लाह, हमें हिम्मत अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा, सेहत अता फरमा, ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा, वलवला अता फरमा, तड़प अता फरमा, अपने दीन पर चलने की, अपने रास्ते में मेहनत करने की। या अल्लाह हमारी, या अल्लाह हमारी इस्तेदाद को दुरुस्त फरमा दीजिए, या अल्लाह फजल फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। माह मुबारक चल रहे हैं, आधा रमज़ान गुजर चुका है तकरीबन, या अल्लाह जो बाकी रह गए हैं करीम उसको भी अच्छा गुजरवा दीजिए। तमाम रोज़े आफियत से नसीब फरमा दीजिए, तमाम नमाज व तरावीह नसीब फरमाइए, ज़िक्र व तलावत का अहतमाम नसीब फरमाइए, नवाफिल का अहतमाम नसीब फरमाइए, ज़कात की अदायगी की तौफीक अता फरमाइए, हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाइए, जुल्म व ज़्यादती को छोड़ने वाला बना दीजिए। या अल्लाह क़त्अ रहमी से बचाइए, सिला रहमी की तौफीक दीजिए, दिलों को कीने से पाक फरमा दीजिए, तमाम मुसलमानों की मोहब्बत दिल में डाल दीजिए। या अल्लाह मखलूक के लिए नफ़ा रसा बना दीजिए। या अल्लाह एक बंदे को आप जैसे देखना चाहते हैं वैसे हमें मार में बना दीजिए, हमारे ज़ाहिर की इस्लाह फरमा, हमारे बातिन की इस्लाह फरमा, हमें जो बीमार हैं अपने क्रम से शिफाता फरमा दीजिए। या अल्लाह फजल फरमा दीजिए, जो लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह हमारे जो भी अज़्ज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब, या अल्लाह सबकी बेहतरीन बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे शकील साहब के साहबजादे जो ऐन जवानी के आलम में शहीद हुए एक्सीडेंट में, अल्लाह उसके नौजवान की बेहतरीन बख्शिश फरमा, अल्लाह बेहतरीन बख्शिश फरमा, बेहतरीन बख्शिश फरमा। मेरे भी भाई एक इसी तरह से शहीद हुए अल्लाह, उनके हाफिज़ राशिद अहमद मरहूम, या अल्लाह उसको भी बेहतरीन दर्जा अता फरमा, अल्लाह बेहतरीन दर्जा अता फरमा, दर्जात आलिया अता फरमा। हमारे वालदैन की बख्शिश फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारे ज़ाकुरबा की बख्शिश फरमा दीजिए, हमारे साथ मशायख की बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह और जो मुतासरीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाइए। या अल्लाह अंजाम अच्छा कीजिए, बुरे अंजाम से बचाइए। या अल्लाह खुशी करम फरमा दीजिए, अल्लाह आफियत दे दीजिए, दवा में आफियत दे दीजिए, अपने मकबूलिन और सालिकीन का फैज़ नसीब फरमा, उनके साथ सही वाबस्तगी नसीब फरमा, उनका फैज़ हमें अता फरमा दे, अल्लाह मजबूत जोड़ नसीब फरमा दे। अल्लाह या अल्लाह करम कर दीजिए, अभी से लेकर मौत तक, मौत से लेकर मज़ाफ़ल करम से जन्नत में जाने तक जितनी मसायल नाजिल घाटी आने वाली हैं, हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए सहल और आसान बना दीजिए। या अल्लाह अपने पाक दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाइए, बादब और बादशाह हाज़िरी नसीब फरमाइए। या अल्लाह महरूमी से बचाइए, हमारे दुआओं को अपने प्यार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मक़बूल फरमा लीजिए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन। برحمتك يا رب.